ओम नमो भगवते वासुदेवाय हिंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से पांचवा स्कंध अध्याय पांच और श्लोक संख्या पांच। हिंदी का किताब कहां गया? पराभव तावत् अबोध जात जावत् न जिज्ञासते आत्मतत्वम् यावत् क्रिया तावत् इदं मनः वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध पराभवस्तावदबोध जातो यावन् जिगासत आत्मतत्वम् यावन् जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रिया तावत् इदं मनो वै यावत् क्रिया तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध पराभवस्तावदबोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्व यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध
Yeah.
माता जी लोग पराभव हार कष्ट तावत तब तक अबोध जात अज्ञान से उत्पन्न जावत जब तक ना नहीं जिज्ञासते जिज्ञासा करता है आत्मतत्वम आत्मविषयक सत्य जावत जब तक क्रिया कर्म तावत तब तक इदम यह मनः मन वै निःसंदेह कर्मात्मकम् कर्मों में व्यस्त जेना जिसके द्वारा शरीर बंध भौतिक शरीर का बंधन या देह बंधन अनुवाद जब तक जीव को आत्मतत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक उसे अज्ञानवश कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी होती है। वे चतुर्भुजदास मिठाई बना रहे हैं क्या? इतना सुबह सुबह सामान्यतः लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य का अर्ज करना चाहिए, किंतु यह ठीक नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया ता समस्त कर्मों के चंगुल से उद्धार होना चाहिए। जीवन की समस्याएं शुष्क ज्ञान चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवत गीता 4:37 में कहा गया है यथेधांसि समिद्धो अग्निः भस्मात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी भांति ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता तब तक वह भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम 10:32 में कहा गया है इन्ने रविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावा अभिशुद्ध बुद्धया। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता वह अपने को मुक्त हुआ मानता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत जुष्मदंग्रय। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म प्राप्त हो जाए किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाते उन्हें इस संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है, जैसा कि भगवत गीता में व्याख्या की गई है 5:19 बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। मुख्य बात यह है कि श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी से नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में तत्पर भक्त सम्यक रीति से कर्म था ज्ञान को जानता है। अतः अशुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान कर्म अनादितम। वास्तविक भक्त को कर्म था ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं जाता। इसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूस पुरुषम् भोक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कली प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यह भगवान ऋषभदेव का उपदेश है। भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं। ऋषभ जो शब्द है, ऋषभ शब्द का अर्थ होता है ऋषति प्राप्नोति उत्कृष्टम इति ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? उत्तम गति। जो उत्तम गति को प्राप्त किया हो उसे ऋषभ कहा जाता है। या दूसरा अर्थ है ऋष्यते प्राप्यते अनेन परम गति इति ऋषभ। या जिनके उपदेश को जिनके रास्ते पर चल करके बहुत लोग परम गति को प्राप्त किए वह है ऋषभ। जो परम गति को प्राप्त कर लिया है या जो लोगों को रास्ता बतलाया है परम गति प्राप्त करने का, उसे ऋषभ कहते हैं। तो यहां पर परम गति के प्राप्ति का रास्ता भगवान ऋषभ देव पांचवें अध्याय में अपने पुत्रों के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। ये जो पांचवा अध्याय है, पंचमे मोक्ष धर्मोपदेश ही पुत्रानुशासनम उक्त पारमहंस्य च तस्य द्वंद प्रतीक्षया। भगवान ऋषभ देव जो पांचवा अध्याय है, पांचवें स्कंद के पांचवा जो अध्याय है, इस पांचवें अध्याय में अपने पुत्रों को सर्वप्रथम कार्य किए भगवान ऋषभ देव वह है मोक्ष धर्म का उपदेश। मोक्ष धर्मा उपदेश ही मोक्ष धर्म का उपदेश दिए। उसके बाद अनुशासनम कैसे राज्य चलाना चाहिए उसका भी उपदेश दिए। और स्वयं अपने भगवान ऋषभ देव उक्तम पारमहंस्य च तस्य द्वंद्वतिक्षया, संसार के सुख दुख का बिना परवाह किए इसका सहन करते हुए वे पारमहंस स्थिति की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। यह पांचवा अध्याय बड़ा ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। प्रभुपाद जी इन श्लोकों को गाया करते थे। एक पुस्तक भी है भगवान ऋषभ देव की शिक्षा, जैसे प्रहलाद महाराज का शिक्षा है, माता महारानी कुंती का शिक्षा है, वैसे ऋषभ देव का शिक्षा है, जिसे प्रभुपाद जी के लेक्चर का समावेश है। जो लोग पूरे हफ्ते नहीं आए, अब तक से जो बात हुई है इस अध्याय में, प्रथम चार श्लोकों में जो बात हुई है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रथम श्लोक में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान दिए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, मोक्ष धर्म का उपदेश किए, मोक्ष धर्म का सोपान क्या है, क्या करना चाहिए, मोक्ष धर्म क्या है। तपो दिव्यम पुत्र काजीन सत्वम, मोक्ष धर्म क्या है, दिव्य तपस्या करना। दिव्य तपस्या का मतलब होता है भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया जो कार्य है वो दिव्य तपस्या है। यह सुबह सुबह मंगला आरती आना ये तपस्या है, लेकिन दिव्य तपस्या है। तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था, वो किस लिए तपस्या कर रहा था, चार कारण था बताया गया भागवतम में, अजर अमर। वो अजर होना चाहता था, बुढ़ा नहीं होना चाहता था। बुढ़ा नहीं होने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है। आज लोग बुढ़ा नहीं होना चाहते हैं, बाल तो पकेगा तो तपस्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको रंग लेंगे। हिरण्यकश्यप बुद्धिमान था आज के लोगों से, वो तपस्या करने गया अजर, क्योंकि कभी बुढ़ा ना हो। अमर, मैं कभी मरूं नहीं। अजेय, मुझ पर कोई विजय प्राप्त ना करे। और अपराज्य, मैं कभी प्राप्त न हो। ये चार उसकी इच्छा थी। चार इच्छाओं से हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था। तो कुछ लोग अपने लिए तपस्या करते हैं, यह तमोगुणी तपस्या है। कुछ लोग समाज के लिए तपस्या करते हैं, ये रजोगुणी तपस्या है।
घर द्वार छोड़ करके प्रभुपाद जाते हैं कि ट्रेन में बम्बई में देखिए सुबह से रात तक लोग जाते हैं, 7 दिन में 5 दिन तक परिवार से बाहर रहते हैं, तपस्या करते हैं 2 दिन के लिए, और सात्विक तपस्या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग, जैसे हिरण्यकश्यप कर रहा था देवताओं के प्रति, ये सब जो तपस्याएं हैं वो प्रकृति संसार के अंदर है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया गया तपस्या है वह दिव्य तपस्या कहलाता है। तो भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को दिव्य तपस्या करने का परामर्श दे रहे हैं। तपो दिव्यम पुत्र का जीन सत्वम नायम देहो देह भाजा निलोके काष्ठान कामात अरहते विद्भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का जीन सत्वम शुद्धेत तस्मात ब्रह्म सौख्यम तुनंदम। ऐसी दिव्य तपस्या से हमारी शुद्धि हो सकती है। यह शुद्ध यह जो दिव्य तपस्या है हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। ये भगवान का नाम लेना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, ये दिव्य तपस्या है। सब लोगों से नाम नहीं लिया जाएगा, हम लोग भी सोलह हमारा एक बार बंद हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। क्या बात है, बात है ना, 16 माला कर लिया लगता है कि अपना भार उतर गया, वो 16 माला भी नहीं होता है। दिन भर बात करना है तो खूब बात करेंगे लेकिन 16 माला नहीं हो पाता है। प्रभुपाद के मिनिमम 16 राउंड। महाप्रभु कहते हैं कीर्तनिये सदा हरि, निरंतर नाम कीर्तन होना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये बड़ा तपस्या है, कई एक प्रकार की तपस्या होती है, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। भगवद गीता के 17वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, अलग अलग तपस्याएं होती हैं। तो मंगला आरती में आना ये तपस्या है, भागवत कथा सुनना ये तपस्या है, वैष्णव का सेवा करना ये तपस्या है, कृष्ण का सेवा करना यह तपस्या है, और ये सब तपस्याएं जो हैं वो दिव्य तपस्याएं हैं। ये दिव्य तपस्या क्या करेगी, शुद्धेत अस्मात, दो काम करेगी, दिल को साफ करेगी, शुद्ध करेगी। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण को मार्जन करेगी एक बार, और दूसरा ब्रह्म सख्यम तू अनंतम जय श्री गौ निकास विहार श्राम सम्मान की जाए। तू मतलब निश्चय ही, अरे भैया जिस आनंद को हम संसार में ढूंढ रहे हैं वह आनंद जिसे ब्रह्मानंद कहा जाता है, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी इस तपस्या से। भक्ति योग जो है महाप्रभु कहते हैं केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य नहीं था। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु लाए हैं, क्या लाए हैं, आनंद का सागर लाए हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, कथा सुनने से, सेवा करने से दिल तो साफ होगा ही और आनंद की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न उठता है कि कैसे तपस्या हो सकता है और सब लोग तपस्या क्यों नहीं करते हैं, जब दिल को यही शुद्ध करेगा और परम आनंद की प्राप्ति जब इसी से होगी। तो मानो भरत जी पूछ लिए प्रश्न कि पिताजी ये बताने का कष्ट कीजिए कि तपस्या कैसे की जानी चाहिए। आपने कह दिया संक्षिप्त में कि तपो दिव्यम पुत्र का आज पुत्र तपस्या करो, तो बेटा लोगों ने प्रश्न किया मानो कि तपस्या कैसे करनी चाहिए। यह है सभ्यता, नाम जप करो, नाम जप कैसे करनी चाहिए।
बोलिए नाम जप कैसे करने चाहिए?
वो तो नाम है ना, कैसे करने चाहिए? अपराध शून्य हो या करो ये भजन, कई तरीके हैं। एक ये हुआ, और तरीका सुनते हुए है? सुनते हुए तो ध्यान अपने आप रहेगा वहां पर, जब सुनेंगे तो मन इधर उधर नहीं भागेगा, जब नहीं सुनेंगे तो मन भागेगा इधर उधर। सुनते हुए उच्च स्वर से तो तरीके हैं नाम जप करने का। तो मानो वही पूछेंगे तपस्या करनी चाहिए, तपस्या कैसे करनी चाहिए, कौन बतला सकता है? और ये तपस्या ही सबको आनंद देता है, सब लोग तपस्या क्यों नहीं करते हैं? यही दो प्रश्न किए वो लोग, तो उन प्रश्नों का उत्तर दूसरे श्लोक में दे रहे हैं। महसेवाम द्वार माहुर विमुक्त तमो द्वारम जोषित संगी संगम महा महांत हते संचिता प्रसन्नता विमन्वया सुहृद साधवो जे। कहते हैं महत सेवा, महत सेवा, तपस्या कैसे करनी चाहिए, महत सेवा कर करके, महात्माओं की सेवा करके। तद विद्धि प्रणिपाती न परिप्रश्न सेवाया उपदक्षंती ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। महात्मा लोग ही बतला कर सकते हैं कि भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए, तपस्या कैसे करनी चाहिए, वह प्राप्त हो सकता है महात्माओं की सेवा से। और हे पुत्रों, महात्माओं का सेवा ही वह साधन है जिसे द्वारम आहु विमुक्तये, कहते हैं आहु ऐसा कहा गया है। इस शास्त्र के बात को यहां पर कोट कर रहे हैं, अपना बात नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है कि साधुओं का जो सेवा है, सत्संग जो है, वह मुक्ति के दरवाजा को खोलता है। और तमो द्वारम जोशिताम संगी संगम, और जो जोशिता यानी स्त्रियों का संग करने वालों का संग करते हैं वो नरक में जाते हैं। जो साधुओं का संगति करते हैं उनके लिए मुक्ति का द्वार खुलता है, और जो स्त्रियों का संग ही नहीं, स्त्रियों के संग करने वालों का भी संग करते हैं तो उनके लिए नरक का द्वार खुलता है। अब चुनना है अपने को किस द्वार से हम जाना चाहते हैं, नरक के द्वार से जाना चाहते हैं कि मुक्ति के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनना अपने को है। श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बतलाए हैं भक्ति वृद्धि कैसे होती है और भक्ति का ह्रास कैसे होता है। उत्साह निश्चया धौर्या तत्त कर्मा प्रवर्तना संग त्यागो षडोवृत्ति सदृढ़ भक्ति प्रसिद्धति। और भक्ति नष्ट कैसे होती है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसंगस्य लोलुप्यम सदृढ़ भक्तिर विनश्यति। दोनों में प्राय देखा गया है, इसका वर्णन किया गया, जोषित संग संगी। बात नहीं करने का, भक्ति बढ़ता है जोषित संग संगी का त्याग करने से। असत संग त्याग यही वैष्णव चार, वैष्णव का यही लक्षण है जो असत संग को त्याग दिया है। और भक्ति नष्ट कब होती है? जब ऐसे लोगों का हम संग करें, इनका संग ना करें तो भक्ति में वृद्धि होगी, और संग करेंगे तो दो द्वार खुल रहे हैं, एक मुक्ति का द्वार है और एक नरक का द्वार है। मुक्ति का द्वार खोलने वाला कौन है?
महत् सेवा, साधु महात्माओं का सेवा। और नरक का द्वार कौन खोलता है? जोषित संगी संगम, जो स्त्रियों का संग करता है। स्त्रियों मतलब इलिसिट, उनका संग करने वाला। प्रभुपाद जी कहते हैं लिसिट सेक्स और इलिसिट सेक्स, सेक्स इज बैड। चाहे अवैध मैथुन हो चाहे वैध मैथुन हो, चाहे हीरा चोर हो या खीरा चोर हो, दोनों चोर हैं। एक हीरा चोरी करता है, खीरा चोरी करता है, लेकिन दोनों चोर हैं। तो इन लोगों का संग करने से जोशिता संगी संगम इंडरक का द्वार है। तो मानो अफकोर्स भरत जी इत्यादि तो महान वैष्णव है, लाइक फादर लाइक सन। अब सामने ही सोगे तो मैं भी सो जाऊंगा, मैं भी थका हुआ हूं, गड़बड़ तो हो जाएगा। सामने बढ़कर मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं क्या बोल रहा था अभी? लाइक फादर लाइक सन। तो ऋषभ देव के बेटे थे, कोई अड़ी-नरी आदमी नहीं थे। तो इन लोगों को अब जोशित संग संगी के विषय में इच्छा नहीं है सुनने का। तो मानो पूछ रहे हैं कि मुक्ति का जो ज्वार खोलने वाले साधुओं की संगति है, तो भाई साधु होते कैसे हैं, उनका लक्षण तो बताइए। तो श्लोक दो के आधा में और श्लोक तीन में, इन दो श्लोकों में साधुओं का लक्षण बताया गया है। महानतम ते समुचिता शांता विन्मय सुहृद साधु जे। जो महात्मा होते हैं, महानताम जो महात्मा होते हैं, वे कैसे होते हैं? कहते हैं समुचिता। समुचिता का दो अर्थ होता है। एक तो होता है समानचित वाले, मोटा मोटी, यानी सबके प्रति समान भाव रखने वाले, ये समचिता हुए। और समचिता का दूसरा अर्थ है कि जो जिनका चित्त सम्यक प्रकार से भगवान में लग गया है। चित्त का मतलब होता है मन, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है इंद्रिया, चित्त का मतलब होता है कॉन्शसनेस, और चित का मतलब होता है दिल। पांच चित के अर्थ होते हैं। जिनका सब भगवान में लगा, जिनकी इंद्रियां भगवान में लगी हुई हैं, अपने इंद्रियों द्वारा केवल भगवान का ही सेवा करते हैं, जैसे महाराज अम्बरीश। जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, भगवतमयी बुद्धि जिनकी है, जो कृष्ण कांसस हैं, जिनकी चेतना कृष्ण में लगी हुई है, और जो अपने दिल को कृष्ण को अर्पित कर दिए हैं, वे कहलाते हैं समचित्ता। और दूसरा अर्थ है जो संभाव, भगवान का यह स्वरूप है, भगवान संभावी हैं, है? तो समचित्ता पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है प्रशांत। साधु महात्मा लोग प्रशांत होते हैं, प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत। शांत मतलब शांत, जिन शांति है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पीस। ठीक है, कहने के लिए बात में ठीक है। कंटेन, कोई हैंकरिंग नहीं है, है? जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, अपिपल धर्म राजा पितृवत रंजन प्रभु निस्पृह सर्व कामे भ्यो कृष्ण पादानु सेवया। निस्पृह, भगवत गीता के सर अध्याय में भगवान बताते हैं विहाय कामान सर्वान पुमान शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारम सामे शांतिम अधिगच्छति। शांति का डिफिनेशन यह है। पीसफुल तो अंग्रेजी कह देते हैं, लेकिन वो असली मीनिंग नहीं है। पीसफुल सही मतलब मीनिंग नहीं है, कंटेन उसके नजदीक आ रहा है। लेकिन शांत का परिभाषा जो है विहाय कामान सर्वान, जो समस्त प्रकार के कामनाओं को त्याग दिया है, पुमान शरती निस्प्रिय,
जिसे कोई स्प्रिया न रह गई है किसी वस्तु के प्रति, लोलुपता नहीं रह गई है, ग्रीड नहीं रह गई है। पुमान शरती निर्ममो, जिसे किसी प्रकार की ममता नहीं हो, अहम ममेति से वो परे हो गया है। निरहंकारम, जो मिथ्या अहंकार से शून्य हो गया है। स्वामी शांति मधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो प्रशांत, ये जो महात्मा कैसे होते हैं, प्रशांत होते हैं, यानी सब एक कर लिए हैं ये चारों चीज। और विमन्वय, अक्रोधी, जिनमें कभी गुस्सा नहीं आता है, क्रोधहीन। तो कोई प्रश्न कर सकता है, जब क्या इसका मतलब हनुमान जी महात्मा नहीं है क्या, अर्जुन महात्मा नहीं है क्या? क्रोध मतलब अपने लिए क्रोध न करना। यदि वैष्णव और विष्णु के लिए कोई कुछ करता है तो क्रोध करना चाहिए। हनुमान यदि क्रोध नहीं किए तो लंका को जलाए ही नहीं होते, क्रोध से लंका को जलाए। अर्जुन को क्रोध हुआ तब महाभारत युद्ध में सबको मारे अर्जुन। तो विमन्मय मतलब अक्रोधी, क्रोधहीन। तो ये तीसरा गुण हो गया। पहला गुण है महात्मा का समचित्ता, जो समान चित वाले हैं। दूसरा है प्रशांता, जो प्रकृष्ट रूपेण शांत है, सब प्रकार से संतुष्ट है। तीसरा है विमन्मय, जो अक्रोधी है, गुस्सा नहीं करता है। चौथा है सुहृद, जो सबके प्रति सुहृद है। जब तक से वो सुहृद नहीं होगा तब तक से वो प्रचार कैसे करेगा। नामे रोती जीवे दया, वैष्णव से वन, यहां छाड़ी धर्म नाही सुनो सनातन। भगवान चेतन महाप्रभु सनातन गोस्वामी का सच्चा देव कहते हैं, जीवे दया, जीवों पर दया करना ये महात्माओं का धर्म है। भगवान सबके प्रति सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम प्रांति मुच्यते, भगवान सबके सुहृद हैं। वैसे ही साधु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग भी सबके प्रति सुहृद हैं। साधवो, जिसका आचरण शुद्ध हो। मैं क्या करता हूं, संत उसे कहते हैं जिसका दिल शुद्ध हो, और साधु उसे कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो। तो महात्मा का डिफिनेशन कहते हैं महान तो होते ते, मतलब निश्चय ही वे लोग महान हैं, महात्मा हैं। कौन कौन? समचित्त, प्रशांता, विमन्वय, शुद्ध, साधु जे, और जो साधु हैं जिनका आचरण शुद्ध है। इतना कहने के बाद अब आगे कहते हैं कुछ और लक्षण। जेवा मयी से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरात्मस्तु न प्रीति युक्ता यावद अर्थलोके। इस श्लोक में तीन बात कहते हैं। कहते हैं पहला गुण है साधुओं में, वैसे महात्माओं में क्या है, जे वे लोग वा मयि से, मुझ भगवान में, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को डायरेक्टली कह रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु छद्म रूप में आए थे इसलिए नहीं कहे मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान ऋषभदेव कहे हैं कि मैं भगवान हूं। मई ईसा मुझ भगवान में कृत सौहृदार्थ, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, मुझ भगवान से जो प्रेम करता है वह महात्मा है। जो महात्मा होते हैं वो केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से प्रेम करते हैं, चाहे वो वृंदावन धाम हो, चाहे गौवें हो, चाहे वैष्णवगढ़ हो, जो भी हैं जगन्नाथ, जो कृष्ण से संबंधित हैं उनके साथ में महात्मा लोग प्रेम करते हैं, और जो कृष्ण विमुख हैं उनके प्रति प्रेम नहीं है।
तो पहला ए सॉरी ए हुआ छठा गुण। सातवां है जनेषु देहं वरक वार्तिकेषु, जो लोग अपने घर गृहस्थी में रचे पचे हुए हैं, देह के भरण पोषण में पुत्र पत्नी परिवार इसी को सर्वस्व मानते हैं, उनके साथ कहते हैं उनके साथ न प्रीति जुक्ता, उनके साथ ये लोग प्रीति नहीं रखते हैं, यानी जो संसारिक लोग हैं संसारियों से मिक्स नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं संग देने जाओ संग मत लो, प्रचार करने का मतलब वैष्णव को चाहिए जाकर के संग देना न कि संग लेना शुरू करें। तो न प्रीति जुक्ता, जिनको संसारियों में प्रीति न हो या संसार में प्रीति न हो वह महात्मा है। और आठवां गुण कहते हैं यावद अर्थश्च लोके, इस संसार में लोग उतना ही काम करते हैं जितना से रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो जाए, गृहस्थ लोग भी महात्मा होंगे ना, तो भरण पोषण हो जाए। तो ये आठ गुण बतलाए हैं, तब साधुओं का गुण बतला लिए। अब उसके बाद मान लीजिए कि भरत जी इत्यादि पूछे नहीं कि थोड़ा पिताजी संसारियों का भी गुण बता दीजिए, उनका गुण क्या होता है, वो कैसे देखने में लगते हैं, दो आंख होता है चार आंख होता है सिंह होता है कैसे लगते हैं, बड़े खूंखार होते हैं संसारी लोग। तो मानो ऋषभ देव कहते हैं हम सब उसी में हैं, चिंता मत करो बेटा। अब संसारियों का गुण गा रहे हैं श्लोक चार से, कहते हैं नूनम प्रमत्त कुरुते भी कर्मम यद इंद्रय प्रीतय आपणोति न साधु मन्ने यत आत्मयोयम असन अपि क्लेश असद आसदेह। कहते नूनम मतलब निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं थोड़ा तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि पहले के ध्यान से मत सुनो, पहले वाला भी साधुओं का लक्षण भी ध्यान से सुनना चाहिए, हम लोग साधु बनना है क्या संग करना चाहिए देखना है। और संसारियों का बात सावधानी करके दे नूनम निस्संदेह, ध्यान से सुनो संसारी कौन है, प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण मत्त, मत्त मतलब पागल और प्रकृष्ट रूपेण मत्त मतलब महापागल, पागलों पागलों का सरदार, एक तो बंदर उसे शराब पिला दो बंदर को कैसा हो जाएगा, मदमत्त हाथी, ये हाथी तो ऐसे ही मद होती है और शराब पिला दो हाथी को तो वो मदमत्त कहलाती है। तो वही वो शब्द है मत प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण मत्त, बिल्कुल पागल हो गया है आउट ऑफ कंट्रोल। कुरुते भी कर्म, पाप कौन कर्म करता है, पाप कौन करता है जो बिल्कुल महापागल है, जो थोड़ा सेन व्यक्ति होगा पाप करने से डरेगा सोचेगा, तो किसी का मर्डर कर देना, किसी का धन लूट लेना, किसी घर में आग लगा देना, किसी की स्त्री का हरण करना, ये सब जो अतताईगिरी करना, बंबईया भाषा में दादागिरी अतताईगिरी अतताईगिरी, ये लोग प्रमत्त लोग हैं। कहते देख लेंगे क्या होगा, कौन दिखाए भगवान है देखेंगे क्या होगा। कृते भी कर्म, कर्म अकर्म और विकर्म, यहां पर विकर्म शब्द आया है यानी पाप कर्म। कर्म मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी और अकर्म मतलब भक्ति करना और विकर्म मतलब पाप कर्म। जितने लोग सो रहे हैं तो रात रहे तो हरे कृष्णा 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 हरे राम। एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था सप्ताह हो रही थी तो एक व्यक्ति सो रहा था, तो मैंने कहा जो सो रहे हैं हाथ उठाइए, तो भी वो सो रहा था नहीं उठाया, सब लोग हरे कृष्ण जोर से बोल लिए तब वो जगह तो भी हाथ उठा लिया बाद में। तो कुरते भी कर्मा पाप कर्म में लगे रहते हैं और किस लिए पाप कर्म करते हैं, यदि इंद्रिया प्रत्यया आप्रणोति, इंद्रिय तृप्ति के लिए यह कार्य करते हैं। भगवान इस शब्द कहते हैं, हे पुत्रों न साधु मन में, मन में मतलब मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं, यानी कह रहे हैं कि तुम लोग इसे मत फंसना भूल करके भी, तुम लोग इंद्रिय तृप्ति मत पड़ना, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति करना मतलब पाप करना है। आत्मयोगम असदपि, यह सत्य नहीं है, इंद्रियों को हम तृप्त नहीं कर सकते हैं, और क्लेश आस देह, और विभिन्न प्रकार का देह प्राप्त करके तुम लोग दुख ही दुख भोगोगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में कर्मियों का गुण बताए। तो ये तो यहां पर विकर्म शब्द का बात किए है ना। अब मानवीय लोग कह रहे हैं लेकिन जो कर्म करता है वो ठीक है, आपने कह दिया कि संसारी व्यक्ति हुआ है, पापी हुआ है, जो नरक का द्वार उसके लिए खुला है जो विकर्म करता है, लेकिन जो कर्म करता है उसके लिए क्या है, जो कर्मी है उसके लिए क्या है, तो उसका व्याख्या इस श्लोक में करते हैं। यहां पर तावत और जावत दो विशेषण से इसको शुरू करते हैं। तावत काल पर्यंत इति तावत, और यावत काल पर्यंत इति आव, तब तक और जब तक, इस दो बात पर आप लोग ध्यान रखना। शुरू कहते हैं पराभव, पराभव मतलब पुनरपि जन्म मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यहां पर तो कह दिया जब विकर्म करता है वह बार बार देह ग्रहण करता है और देह से दुख भोगता है, जब तक से देह नहीं है दुख नहीं है, देह से ही दुख भोगता है। कृष्ण बोली से ही जीव भगवान चा अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसारे दुख। जो कृष्ण को भूल जाता है उस जीव को माया दुख देती है, देह दे दे करके, बिना देह के हम दुख और सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यहां पर तो थोड़ा बहुत सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन नरक में जाएंगे वहां भी जमराज टेम्पररी देह देंगे है? उस देह का नाम क्या है कोई जानता है? जातना शरीर, जातना भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए टेम्पररी भाड़े पर शरीर दे देंगे यमराज जी, क्योंकि बिना शरीर के हम लोग सुख दुख नहीं भोग सकते हैं। यहां पर भगवान शब्द कहते हैं असन्नपी, इच्छा मंगुर है लेकिन है कैसा, क्लेशब द मतलब देने वाला और क्लेश मतलब क्लेश, क्लेश को देने वाला या देह है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भाव, जिसे भाव रोग कहा जाता है, उसी बात को कहते हैं कि जब तक से देह रहेगा तब तक से जन्म मृत्यु का चक्कर परा रहेगा, इसलिए कहते हैं पराभव, ये जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ा रहेगा। तो मानो ये पूछ रहे पिताजी कितना दिन तक पड़ा रहेगा, कितना दिन देह ले लेकर के हम लोग दुख भोगेंगे, तो कहते हैं तावत जब तक से, तब तक से अबोध जातो, अबोध जातो, जन्म मरण प्रवाह लक्षणम संसार प्राप्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है ये जो संसार का लक्षण है। अबोध किसके विषय में अबोध, आत्मा अनात्मा परमात्मा इति, आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। अनात्मा जो जड़ पदार्थ है देह, देह के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। हम समझते हैं कि देह मेरा है, लेकिन हम चावल दाल खाते हैं कैसे वो चावल दाल खून बनता है, मल मूत्र बनता है, वो भी हम नहीं जानते हैं। देह कैसे चल रहा है वो भी हम नहीं जानते हैं। देह के विषय हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो अबोध हम हैं इस देह के विषय में, आत्मा ही के विषय में नहीं। अरे जिस देह का भरण पोषण कर रहे हैं, कल ही मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे नूनम प्रमत्ता कुरते भी कर्मा यद इंद्रिय प्रत्यय आपरण होती। ये देह हम लोगों का नहीं है। दिस बॉडी इज नॉट आवर बॉडी एंड वी आर ट्राइंग टू सर्टिफाई। दूसरे खेत में फिर थोड़ा हम पानी चढ़ाने जाएंगे, अपने खेत में पानी चढ़ाएंगे ना, अब है ना, रुपया कमा करके दूसरे के बैंक अकाउंट में डालेंगे, अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे ना, हम लोग दूसरे के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। ये देह अपना नहीं है और संतुष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, अपना है ही नहीं। ये अबोध है। तो आत्मा अनात्मा परमात्मा इति अबोध है। हमें ज्ञान नहीं है आत्मा के संबंध में, देह के संबंध में, और भगवान तो लास्ट में है उनके विषय में। विवेक तस्मात जात आत्मनम यद विज्ञानी न सर्वविज्ञातुम भवतु। तब अब आगे कहते हैं यावत, तो मानो कब तक से अबोध रहेंगे हम लोग, कब तक से अज्ञानी बने रहेंगे। कहते हैं यावत जब तक से जिज्ञासत आत्मतत्व, जब तक से आत्मतत्व का हम जिज्ञासा नहीं करेंगे। आत्मतत्व हु एम आई, मैं कौन हूं, जीवर अमी के केने अमार जाए ताप त्रोय, यहां नहीं जाने के मने हित हो। भगवान चेतन महाप्रभु सनातन गोस्वामी मिले तो पहला प्रश्न कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, संसार में दुख क्यों मिल रहा है, मैं दुख नहीं चाहता हूं। तो भगवत ज्ञान परमात्म ज्ञान, भगवान के संबंध में जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान जो है, वो हमारे सुख का कारण है, शांति का कारण है। इसलिए वेद कहता है यद विज्ञाने नाम सर्वम विज्ञातुम भवतु, जिसको जानने के बाद, भगवान को जानने के बाद सब कुछ अपने आप जान जाएंगे हम लोग। तो भगवान को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्थापना किए हैं एक काम के लिए, और वह काम है भगवान को जानना। तो जो भी इस काम से जुड़ा हुआ है उसका एक ही लक्ष्य है, जो रोटी कपड़ा मकान अमेरिका जाने का टिकट शादी करने के लिए स्कान ज्वाइन किया है वो गलत गाड़ी में चढ़ गया है। स्कान है एकमात्र एक काम के लिए, और वह है भगवान को जानने के लिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो हैं एक काम के लिए है, जो कुछ प्रभुपाद जी दिए हैं केवल एक ही काम के लिए, और वह है कृष्ण को जानने के लिए। यस्तु विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवतु, भगवान को जानने पर सब कुछ को जान लेंगे। मनुष्य जीवन इसलिए दिया गया है यावन न जिज्ञासता आत्मतत्व, जब तक से आत्मतत्व का हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक से हम लोग आत्मा दें और भगवान के विषय में नहीं जानेंगे। तब तक से हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम इसी में पड़े रहेंगे। मानव देह मिला हुआ है इसी काम के लिए। इसीलिए श्रुत गोस्वामी शुरू में ही यह बात कहे हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीति जावो जीवेत जावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कहते कामस्य न इंद्रिय प्रीति, जीवन जीने का लक्ष्य इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, इन
इंद्रिय तृप्ति के लिए मानव देह नहीं दिया गया है, तो क्या करें, क्या करें, हम दौलसव है क्या करें, मनुष्य देह मिला हुआ क्या करें इसको प्राप्त करके। कहते लाभ हो जीवित जाओ तो, अरे उतना ही रखो, रोटी कपड़ा मकान है, जीवन मत बिताओ, लाभ हो उतना ही प्राप्त करो, जीवित जाओ तो जिसे बॉडी एंड सोल टुगेदर हो सके बस। तो और समय क्या करेंगे, बहुत समय है। तो कहें जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मानव जीवन प्राप्त करने का परम लक्ष्य है तत्व का जिज्ञासा करना। यहां पर वही बात कहा गया है, जिज्ञासत आत्म तत्वम, आत्मा अनात्म और परमात्मा, इसके विषय अवोध है और दुर्भोग रहे हैं, इसको जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य। यस्य तत्व जिज्ञासा, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जानना, देह क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, संबंध क्या है, इसको जानना। नौ, अर्थे यस्य कर्म भी, इस संसार में आकर के बैंक बैलेंस करने के लिए बर्बाद समय मत करो, बैंक बैलेंस करने के लिए देह नहीं मिला गया है, ये देह दिया गया एकमात्र एक काम के लिए, और वह है तत्व जिज्ञासा। अब इतना इतना कहकर काम खत्म हो गया बस। और जो कर्मी लोग हैं उनके विषय में पहले बता दिए, क्यों कर्मी बने हैं वही बता दिए, कितना दिन संसार में रहेंगे वही बता दिए, लेकिन फिर भी खोद खोद करके बता रहे हैं इस बात को। फिर कहते हैं कि जो पराभव उसका व्याख्या कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु का कारण क्या है, ठीक है, भगवान को नहीं जानना एक कारण है, आप बताया और क्या कारण है। यावत क्रिया तावत इदम मनो, वही पहले कहे कि विकर्म कारण है, कुरुते विकर्म, अब कहते हैं विकर्म ही नहीं कर्म भी कारण है, क्योंकि कर्म और विकर्म दोनों का बंधन होता है, कर्म बंधन होता है। कर्म में दो कर्म है, पुण्य कर्म और पाप कर्म, तो पुण्य कर्म का बंधन होता है, फल मिलता है, और पाप कर्म का फल मिलता है, पाप कर्म का फल नरक आदि ज्योनि और पुण्य कर्म का जो फल है स्वर्ग आदि ज्योनि, यही हुआ ना। लेकिन चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, प्रभुपाद जी कहते हैं ड्राई स्टूल और वेट स्टूल, बोथ आर स्टूल, चाहे सूखा मल हो चाहे गीला मल हो, दोनों मल है। तो वैसे ही पुण्य कर्म या पाप कर्म दोनों कर्म है, और दोनों का कर्म फल हमें भोगना पड़ेगा। नहीं भोगना चाहते हो तो अकर्म करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यह कर्म कहते हैं यावत क्रिया तावत इदम मनो, वही किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन कर्म में रंगा हुआ जाता है, जब तक मन अशुद्ध रहता है, क्योंकि इंद्रियों के पास अपना शक्ति नहीं, इंद्रियों का कंट्रोलर मन है, तो मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मन शुद्ध हो जाएगा तो इंद्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएगी, और मन को शुद्धि का सरल तरीका है मंत्र, मनोत्रायति इति मंत्र, जो मन को बांध करके रखे, जो मन को ठीक कर दे उसे मंत्र कहते हैं। और हमारे पास मंत्र ही नहीं है, महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और इस संसार में जो भी कर्म गए कर्मात्मकम, चाहे पुण्य कर्म है चाहे पाप कर्म है, जैन शरीर बंध, शरीर में बंधन का जो कारण है यही है। तत्र हेतु यावत क्रिया विकर्म व्यापारा तावत कर्मात्मकम कर्म स्वभावम एवं मन स्यात् जेन कर्मात्मकेन मनसा शरीर पुनः पुनः जायमाने बंधो यद्वा शरीरादि बंधानि यस्मिन् स संसार जन्म मरण प्रवाह लक्षणम संसार
एवं स्यात्। तो जब तक से कर्म में बंधे रहेंगे तब तक से पराभव विफलता मिलती रहेगी, यानी चढ़ रहे हैं फिसल जाएंगे, चढ़ रहे हैं फिसल जाएंगे। वो लूडो खेलते हैं ना, वो सांप वाला ऊपर जाते हैं बम नीचे आते हैं, जब कर्म फल में रहोगे ऊपर जाओगे बम ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। तो कर्म फल से परे होना, यदि देखा जाए तो महात्माओं का केवल 8 गुण बताकर चुप हो गए हैं, और आगे जितने श्लोक हैं सब संसारिक लोगों के गुणगान करते हैं भगवान ऋषभदेव। संसारियों के उसने बहुत बात बताए हैं, क्योंकि हम लोग संसारी हैं, हम लोग महात्मा नहीं हैं। तो समझा रहे हैं संसार के दुखों का। तो ये जो 2 श्लोक है, इन 2 श्लोकों में संसार में बंधन का कारण बताए। पहले श्लोक नूनम प्रमत्ता कुरते विकर्म, विकर्मता को बताए, अब इसमें कर्म को बताए हैं कारण। और तब तक से बंधे रहेंगे जब तक से हम आत्म तत्व का जिज्ञासा नहीं करेंगे, यही इस श्लोक का सार है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? माइक माइक, जिसको प्रश्न करना है सामने कर लो, नहीं तो कथा खत्म होने के बाद यहां आकर सामने पूछते हैं यहां पर। अरे पूछोगे वहां तो सब लोग समझेंगे।
हरे कृष्णा।
हरी
मुझे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जब तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते, उन्हें इस संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है?
ज्ञान की पराकाष्ठा है कृष्ण को जानना। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान मान प्रबद्धते। कृष्ण का शरण लेना ज्ञान की पराकाष्ठा है। उसके आगे ही बताए हैं प्रभुपाद जी, डिफिनेशन दिए हैं।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इन फोर वेदास 97% कंप्राइजेज ऑफ ज्ञान कांड एंड कर्म कांड विच आर नॉट रेलेवेंट टू डिवोटीज ऑफ कृष्णा। स्टिल इन ऑल ओवर लिटरेचर वैदिक वर्ड इज यूज्ड, लाइक वैदिक नॉलेज, वैदिक विजडम, वैदिक लाइफस्टाइल। So, but Vedas are not relevant to us most of the time.
वेदा और वैदिक दोनों अलग अलग हैं। भगवान गीता में कहते हैं त्रैगुण विषयान वेदान स्त्रिगुण भवा अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद है उसमें प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित बातें की गई है। तुम न स्त्रैगुण, वैदिक मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुसार, वेद उसमें से एक है। और वैदिक शास्त्रों में शिरोमणि जो है वह है श्रीमद् भागवतम।
थैंक यू।
ओके इधर है जो हाथ तो उठा रहे हो, कोई बात नहीं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा कि शास्त्र के माध्यम से कि कहा कि जो लोग स्त्री का संग करते हैं वो लोग सीधा नरक में जाते हैं, लेकिन हम लोग तो ग्रस्त लोग हैं, ऑफिस में जाना पड़ता है, वो तो हजारों संख्या मिलते हैं, तो हम लोग कैसे बच के रहेंगे उनसे?
इस स्त्री, इस मतलब मालिक और त्री मतलब तीन, इनके तीन मालिक हों, समझ गया कहने का मतलब? प्रभुपाद जी कहते हैं जो स्त्री जो सोचती है एक के विषय में, बात दूसरे से करती है और रहती है तीसरे साथ में, वैसे स्त्री का संग यानी वेश्याओं का संग।
हरे कृष्ण। अभी आप बोला है हनुमान जी रागत कोती था और लंका पूरा जला दिया, और
आप उड़िया में बोल रहे हो हिंदी में बोल रहे हो?
ठीक
है बोलो।
और अर्जुन ने बहुत कोशित था, वो महाभारत युद्ध किया और भगवान ने प्रतिज्ञा से करता जो भक्त किसका साथ युद्ध करेगा, भक्त किसका साथ फाइटिंग करेगा? भक्त तो भक्त सब भक्त है ना,
भक्त भक्त पहला नंबर तो फाइट करते नहीं है, जो फाइट करता है भक्त है नहीं।
मैं तो देख रहा है मंदिर में डेली ऐसा होता है,
तो हम लोग
भक्त बनने के बाद
ये लाल कपड़ा पहनने से भक्त नहीं बन गया। अभी तो नाम लिखाए हो, परीक्षा पास करना बाकी है, चिंता मत करो।
ठीक है जी, ये अपराध है कि नहीं? जो किसका साथ झगड़ा किया कि मारपीट करा कि गुस्सा आया
बहुत बड़ा अपराध है
अपराध है फिर ये अपराध होने पर इसको मालूम है जो अपराध है फिर ऐसा काम क्या करें
वो अपराध है तो अब तीन प्रकार से लोग समझते हैं एक सुन करके समझते हैं एक देख कर समझते हैं और एक एक्सपीरियंस कर करके अब पता नहीं आप किस में से हो एक लोग सुन करके भाई ऐसा अपराध है नहीं करना चाहिए वो फिर झगड़ा नहीं करते हैं एक लोग देखते हैं कि झगड़ा कर रहे हैं भाई ठीक नहीं है और झगड़ा करते हैं फिर नहीं समझते हैं तो हम लोगों को अपराध नहीं करना चाहिए उचित नहीं है वैष्णव होकर के नहीं तो सब लोग कह रहे हैं देखो ये साधु लोग लड़ रहे हैं आपस में हंसेंगे लोग चलो माइक
ठीक एक मिनट
नहीं नहीं आप आपका प्रश्न ब्रजहरी प्रभु बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा
और दो क्वेश्चन है
नहीं एक
दो नंबर क्वेश्चन है
जो मैं बोला हूं उसी में से बोलो तुम मैनेजमेंट का प्रश्न यहां मत पूछो मेरे ऑफिस में आगे पूछना
हाँ। एक मिनट जो बाहर भक्त बाह्य जगत में जो भक्त जो पाप करता है नरक जाता है जब भक्त जो पाप करेगा वो कहां जाएगा
सबके लिए एक ही नरक है
क्यों भक्त तो भजन साधन करता है मंगल आरती
भक्त है ही नहीं जो पाप करता भक्त कहां से हो गया
क्या
पापी है जो पाप करता है वो भक्त कहां से हो गया वो तो पापी है पाप करने वाला भक्त नहीं है ये दोनों एक साथ में नहीं जाते हैं जो भक्त होगा वो पाप नहीं करेगा और जो पाप करेगा भक्त नहीं होगा चलो माइक दो
हरे कृष्ण
तुम कल से प्रवचन करना शुरू करो
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि शरीर जो है वो सुख दुख के लिए आवश्यक है तो
सुख के लिए नहीं बताया मैंने दुख के लिए बताया मैं
अच्छा
सुख इस संसार में है ही नहीं
अच्छा तो प्रभु जी सूक्ष्म शरीर जो होता है क्या वो सच्चिदानंद है आत्मा के समान
नहीं
किस प्रकार से वो रिलेशन बनता है आत्मा तो अछूती रहती है किसी भी दुख से तो फिर क्या वो चीज है जो आत्मा को और शरीर को कनेक्ट करता है सूक्ष्म शरीर और इन सब चीजों को
संबंध
स्थिति क्या है
संबंध 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 आत्मा इस शरीर से संबंध बना लिया है उदाहरण के लिए हम लोगों के बाप मां हैं या बेटा है यदि जवान बेटा मर जाता है उसका शरीर अलग है मेरा शरीर अलग है दुख होता है ना क्यों होता है हमारा उस संबंध है दूसरा व्यक्ति को मर गया दुख नहीं उतना होता है कि संबंध नहीं है तो आत्मा आत्मसात कर लेता है मन के साथ में शरीर को छोड़ने की जो क्रिया है वो कहलाते हैं मृत्यु जो स्थूल शरीर है जो दिखाई पड़ता है इस शरीर को छोड़ने की जो क्रिया है वो कहलाती है मृत्यु इसके लिए कुछ करना ही है डेली मर रहा है खत्म हो जाएगा लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ उससे उसको छुटकारा पाने की जो क्रिया है वो कहलाती है मुक्ति और उसी के लिए हमें काम करना है मरने के लिए कुछ काम मत करो बिना काम किए मरोगे बिना काम किए सब लोग मर रहे हैं उसके लिए प्रयास मत करो प्रयास किसके लिए करो मुक्ति के लिए और वो क्या है महासेवा साधुओं का सेवा करो उनका आज्ञा पालन करो उनके वाणी का सेवा करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा
आपके हाथ में माइक आएगा चिंता मत कीजिए हाँ
प्रभु जी आपने बताया कि जो पाप करता है भक्त है ही नहीं है तो जो ग्रस्त होते हैं पूरे तो ग्रस्ती है पांच जगह पे पाप होता है एक तो भोजन बनाने में झाड़ू मारने में चलने में हर जगह तो पाप तो होता ही जाने अनजाने में पाप होता है जब ग्रस्ती में है तो उसके लिए क्या करें
क्योंकि हमारा ठेकेदार बड़ा अच्छा आदमी है हमारा जो ठेकेदार है ना वो कहता ठेका मैं ले लिया हूं सर्वधर्मान प्रत्यज्ञा माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेषाई मां सुचा कायत बड़ा चिंता करता है मेरा शरण में रहो हमारा ठेकेदार पक्का आदमी है पाप नहीं लगेगा भगवान को जो भी खाओ भगवान को अर्पण करो झाड़ू मारो कोई बात नहीं चलिए माइक इनको दीजिए बहुत देर से ये हाथ उठाए हैं थक जाएंगे प्रसाद खाना है
चालू है बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु, एक दो चार श्लोक का, इसके दो चार पहले का श्लोक में बताया है कि हमें साधु या महात्मा का सेवा और संग करने का है। भले वो साधु मायावादी भी हो नहीं भी हो, उसका सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी से मायावादी से हम हमेशा अलग रहना चाहिए।
ये कहां लिखा है मायावादी का सेवा करो?
इसमें है प्रभु, इम्पर्सनलिस्ट है तो भी साधु है, उनका गोल तो एक ही है कि मिजरी से बाहर आने का है, ऐसा है तो उनका साधु का भी सेवा कर सकता है, ऐसा कहा गया है।
महात्मा तो पड़ा होता है निर्विशेष बाधित था भक्त, यदि उनका परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, एक नहीं होता है, भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि एक सी है। उनका लक्ष्य अलग है लेकिन उद्धार की विधि एक है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं, एक निराकार ब्रह्म के सुख होता है, दूसरा भगवान की संगति। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है, ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निश्वर बाधित था भक्त दोनों ही जीवन के सर्व अंग खोज करते हैं, परदशा में पूर्ण बनने का उपदेश है, असंग त्याग ही वैष्णवाचारों के। बोलिए प्रश्न क्या है?
प्रश्न यही है कि इसका मतलब हम मायावादी साधुओं का भी सेवा कर सकते हैं?
इसमें नहीं लिखा गया सेवा करो, उनका सेवा करो, इसमें लिखा नहीं गया उनका सेवा करो। प्रभुपाद जी को डेफिनेशन बताए हैं, ये कह रहे हैं देखिए मैं पढ़ता हूं। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका परम लक्ष्य भी नहीं रहता है किंतु उद्धार की विधि एक सी है, दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं, एक निराकार ब्रह्म में सुख होता है और दूसरा भगवान की संगति में रहकर। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है, ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निश्वरवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं, प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उपदेश है। गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकवादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। दो प्रकार के भौतिकवादी असत हैं, एक तो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, दूसरा मात्र भौतिक है। सही दिशा है महात्माओं की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों से दूर रहना। तो यहां नहीं बताया गया है कि उनका, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि निर्विशेषवादियों का सेवा लोग नहीं करते तो निर्विशेष बंद हो जाएगा ना, अभी चल रहा है, मायावादी लोग अभी भी चला रहे हैं अपना ना, तो कुछ मूर्ख लोग हैं जो करेंगे उनका सेवा।
हरे कृष्ण,
बहुत समय लगेगा। अपने पास पांच माला जाने के लिए लिफ्ट भी है और स्टेयर केस भी है, अब देखना है आप क्या पकड़ना चाहते हो। लिफ्ट पकड़ना चाहोगे जल्दी पहुंच जाओगे, स्टेयर केस में धीरे धीरे जाओगे, बीच में कोई मिल जाएगा बात करने वाला तो वहां फिर प्रभु जी ऊपर कहां जा रहे हो, चलो नीचे चलो, प्रसाद तो नीचे, ऊपर कहां जा रहे हो, बहुत तकलीफ ऊपर है। तो इसलिए लिफ्ट पकड़ लो, साधुओं का संगति करो, चिंता मत करो। हाँ उधर प्रश्न है।
रियल लाइफ सिचुएशन में आज के डेट में अगर अर्जुना जैसी स्थिति हो और उसके सामने भीष्म पितामह खड़े हों और उनके बंधु बांधव लाइक दुर्योधन, तो उसको क्या करना चाहिए?
कृष्ण जैसे गुरु होना चाहिए, उसको मत भूलिए। कृष्ण जैसे गुरु हो तो काम चला दो, बा चिंता मत करो, लेकिन कृष्ण जैसे गुरु होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न नहीं है ना, समाप्त किया जाए। जिसको प्रश्न पूछना है हाथ उठाओ।
गुरु जी, हम जिज्ञासु बनकर जानना चाहते हैं कि लिखा है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो मोह कैसे नष्ट हो, इसका प्रक्रिया, मोह में तो हम फंसे हुए हैं।
आगे क्या बात है ना, नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादाद अच्युत, कहते अच्युत हे अच्युत आपके कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, यानी पूरा गीता का उपदेश सुनने से मोह नष्ट हो जाएगा। गीता पढ़ो सुनो, मोह नष्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। गीता पढ़ो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। चंद्रासन भागवतम की।